नौवां भाग, साकेत में नायक निर्णय। साकेत में नायकत्व को लेकर बहुत विवाद है। कुछ समीक्षक राम को नायक का स्थान देते हैं तो कुछ भरत को। कुछ समीक्षकों की दृष्टि से लक्ष्मण नायक हैं तो कुछ उर्मिला के पक्ष में अपना मत प्रकट करते हैं। वास्तव में साकेत का कवि एक ओर उर्मिला के विरह में व्यस्त है तो दूसरी ओर संपूर्ण रामकथा के प्रति उसकी वैष्णवी भक्ति प्रस्फुटित होती है। फिर एक जटिल प्रश्न उठता है कि इसका नायक कौन है। साहित्य शास्त्र के अनुसार नायक वह प्रधान व्यक्ति होता है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कथा घूमती है तथा अंतिम फल की प्राप्ति उसी अधिकारी पात्र को प्राप्त होती है। आधुनिक काव्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि अब पुरुष के स्थान पर नारी भी नेतृत्व संभाल रही है। इस दृष्टि से यशोधरा में गोपा, कामायनी में श्रद्धा, नूरजहां में नूरजहां, वैदेही वनवास में सीता एक नारी पात्र के रूप में संपूर्ण कथा का नेतृत्व करती हुई अंकित की गई है। साकेत का कभी भी युगानुकूल नायकत्व का पद राम, भरत और लक्ष्मण को न सौंपकर नारी पात्र उर्मिला को प्रदान करता है। उर्मिला आरंभ से अंत तक काव्य के प्रत्येक सर्ग में विद्यमान है, जिस पर सभी पात्रों की आंखें लगी हुई हैं, जो सभी की अनुभूति एवं सहृदयता ग्रहण करती है और इसे अंत में काव्य के फल की भी प्राप्ति होती है। इस काव्य में कवि उर्मिला को केंद्र मानकर कथा कहता है। अतः उसकी समस्त योजना उर्मिला के वियोग वर्णन का पूर्ण शक्ति से प्रकट करने के निमित्त बनी है। उर्मिला विरह साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस विरह की समाप्ति दंपत के पुनर्मिलन में है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, सभी घटनाएं उर्मिला के चरित्र पर घात प्रतिघात करती हैं, उसके वियोग की करुणा को स्पष्ट करती हैं। साकेत के पात्र में कोई भी ऐसा नहीं जो उसके चरित्र पर किसी न किसी अंश में प्रकाश न डालता हो। श्री कमलाकांत पाठक जी का विचार है कि उर्मिला को प्रधान घटना का संचालक नहीं कहा जा सकता। उर्मिला का नायकत्व उसकी प्रमुखता के कारण है, सक्रियता या घटनाओं के केंद्र हैं राम, और प्रस्तुत काव्य में वह महत्व स्थान अर्थात साकेत को दिया गया है एवं उर्मिला व्यथा और राम कथा को सम्मिलित वर्णन किया गया है। इस प्रकार भावना और कार्य का संयोग किया गया है तथा भावना को उत्कर्षित किया गया है, अर्थात उर्मिला को नायिका बनाया गया है, पर घटनाओं के संचालक राम ही रहे हैं। उर्मिला का चरित्र महान है और राम नर ईश्वरता के प्रतीक हैं, जो समूची मानवता के अभ्युत्थान के प्रतिनिधि है, और उर्मिला नारी जीवन के गौरव का प्रतीक है। राम का चरित्र स्थिर है और उर्मिला का गतिशील, फिर भी उर्मिला नायिका है, उसी का चरित्र सर्वप्रधान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उर्मिला और भरत दोनों को नायक स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने उर्मिला को नायिका स्वीकार करने में आपत्ति की है और कहा है कि उर्मिला नवम सर्ग से नायिका पद पर प्रतिष्ठित होती है तथा उससे पूर्व उसका महत्व यथकिंचित है, किंतु साकेत का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उर्मिला का महत्व प्रथम सर्ग से ही है। प्रथम सर्ग में उर्मिला का सौंदर्य वर्णन करते समय कवि की लेखनी विश्राम नहीं लेना चाहती, वह एक के बाद एक चित्र प्रस्तुत करती जाती है। द्वितीय सर्ग में कवि ने उर्मिला से लक्ष्मण के साथ भरत विषयक वार्तालाप की अवतारणा भी संभवतः इसीलिए की जिससे कि वह कथा सूत्र से विच्छिन्न न हो जाए। तृतीय सर्ग में राम वनगमन प्रसंग पर संपूर्ण ध्यान रखने के कारण कवि उर्मिला पर ध्यान न दे सका, किंतु चतुर्थ सर्ग में वन्य विरहिणी उर्मिला की विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्र उपस्थित कर उसने कभी कमी पूरी कर दी। पंचम सर्ग में संपूर्ण रूप से राम के वनगमन का चित्र अंकित है, अतः उर्मिला का चित्रण कवि ने नहीं किया है, किंतु छठे सर्ग के प्रारंभ में उर्मिला की दयनीय दशा का चित्रण है और दशरथ के दिवंगत होने पर शोक विह्वल हो उठी कैकेयी से प्रश्न करती है, माँ कहाँ गए वे पूज्य पिता। सातवें सर्ग में वशिष्ठ द्वारा सूक्ष्म संकेत मात्र दिए गए हैं। आठवें सर्ग में कवि ने उर्मिला को याद किया है। चित्रकूट में उर्मिला लक्ष्मण का क्षणिक मिलन की साकेत एक अनुपम साकेत का एक अनुपम भावपूर्ण स्थल है। तत्पश्चात नवम सर्ग से अंत तक वह महाकाव्य पर छाई हुई है, अतः स्पष्ट है कि वह साकेत की नायिका है। राम के नायकत्व के संबंध में डॉक्टर प्रतिपाल सिंह ने लिखा है, गुप्त जी अपने आराध्य देव राम को न भुला सके और अनायास ही प्रमुख आसन पर ला बिठाया। श्री त्रिलोचन पांडे ने भी राम को साकेत का नायक माना है। साकेत के कवि ने राम को एक अत्यंत उदात्त चरित्र धारण करने वाले महामानव के रूप में चित्रित किया है। राम अपने आप में महान होने के नाते साकेत में भी महान बने हैं। इस उदात्त चरित्र के आधार पर ही राम को साकेत का नायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण वध तथा राज्य रोहण की घटनाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। साथ ही साकेत का आरंभ और समाप्ति लक्ष्मण और उर्मिला के वार्तालाप से होती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भरत के नायकत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, महाकाव्य के पद्धति के विरुद्ध साधु भरत को नायक और वियुक्ता उर्मिला को नायिका बनाया है। यह केवल एक साहित्यिक मौलिकता ही नहीं, इसमें संपूर्ण जीवन दर्शन की क्रांतिकारी झलक दिखाई देती है। लेकिन भरत साकेत के नायक नहीं हैं, उनकी कथा महाकाव्य में प्रासंगिक है, आधिकारिक नहीं। फल की प्राप्ति भी उन्हें नहीं होती। काव्य के रंगमंच पर उनका आगमन सप्तम सर्ग में होता है। साकेत के कुछ समीक्षकों ने लक्ष्मण को नायक का पद दिया है। यह सत्य है कि उनमें निधीरोदात्त नायक के अनेक गुण विद्यमान हैं। धीरोधत्त नायक के अनेक गुण विद्यमान हैं, फिर भी वे इस प्रबंध काव्य के नायक नहीं हैं। इस प्रबंध काव्य का नायक वही हो सकता है जो उसके प्रमुख कार्य को संपादित करे। लक्ष्मण द्वारा निश्चित रूप से प्रमुख कार्य का संपादन नहीं हुआ है। वे कर्तव्य परायण और प्रेम स्पृहणीय हैं। लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से ही उर्मिला के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है और वह एक महिमामयी नारी के रूप में सम्मुख उपस्थित होती है। यदि साकेत का प्रमुख कार्य मेघनाथ वध है तो उसका संपादन लक्ष्मण ने ही किया, लेकिन नारी विरह और प्राधान्य की दृष्टि से वास्तविक नायकत्व उर्मिला का है और औपचारिक नायकत्व लक्ष्मण का। निष्कर्षतः संपूर्ण कथा योजना, चारित्रिक विकास, अंतिम फल प्राप्ति आदि सभी दृष्टियों से केवल उर्मिला ही साकेत का नायकत्व ग्रहण किए हुए है। वह मूर्तिमती उषा के समान दिव्य सौंदर्य से ओतप्रोत है, विनोद वार्ताओं में निपुण राजमहषी है, उच्च कोट की कलाकार है, त्याग एवं धैर्य की सजीव प्रतिमा है, आत्मबलिदान के भाव से ओतप्रोत है, उसमें नारी सुलभ सुकोमलता एवं शालीनता विद्यमान है, वास्तव देशानुराग से परिपूर्ण है, उसमें स्वाभिमान एवं वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, वह सेवामयी प्रेम की प्रतिमूर्ति है और उसकी त्यागमयी तपस्या, तितिक्षा, प्रतिपरायणता एवं शील सौजन्य पूर्ण धीरोदत्तता सर्वोपरि है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल के शब्दों में वह लेडी हीरो है, महिला नायक है, हीरोइन या नायिका नहीं है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।